الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، وامتازوا اليوم أيها المجرمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آج کی کلاس میں آگے بڑھنے سے پہلے کل کا تھوڑا سا ریکیپ کرنا تھا، اس لیے کیونکہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کل کی کلاس ریکارڈ نہیں ہو سکی، ذہن سے نکل گیا، جو بھائی کرتے ہیں وہ کسی وجہ سے آ نہیں سکے، تو کچھ لوگوں نے پھر اس کے بعد سوال کیے اور یہ بتایا بھی کہ اس میں کچھ ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ وہ چاہتے تھے ریکارڈ ہونا، تو اس وجہ سے پھر مختصراً ہم انشاءاللہ ریکیپ کر کے، سمری کر کے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو کل جو ہم نے آیات ڈسکس کری تھیں ان میں سے یہ جو امپورٹنٹ ٹاپکس تھے میرے خیال میں، وہ یہ جو کانسیپٹ تھا فلیوم لا تظلم نفس شیئا، کہ اللہ تعالیٰ اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں گے. تو ایک تو اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے. تو ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا، یہ دراصل ظلم کا مطلب ہوتا ہے. صرف کسی کو مارنا پیٹنا، اس کے اوپر فزیکل ٹارچر کرنا، خالی یہ ظلم نہیں ہوتا، یا زبان سے ٹارچر کرنا، صرف یہ ظلم نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا جس کا جتنا حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ عقیدے کا پوائنٹ یہ ڈسکس کیا تھا کہ انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ملک میں کوئی یعنی کوئی کمی نہیں ہے، اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور ہم جو انسان ہیں وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، بہت ہی چھوٹے ہیں، یعنی نہ ہونے کے ہی برابر ہیں تقریباً ہمارا وجود. لیکن اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اور ہمارے اتنے چھوٹے ہونے کے باوجود سزا کیوں دیتے ہیں، انسانوں کو سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو کہ کافر کو سزا کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کافر کو سزا دینا تو پھر بھی چلیں ایک مسلمان کے سمجھ میں آ جاتا ہے ذرا سا، اس کو اگر بات یاد دلا دی جائے، اگرچہ کہ یہ بھی ایک عقیدے کا مسئلہ آج کل بہت زیادہ اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں کو بدعقیدہ کرنے کے لیے، اپنے دین سے بدگمان کرنے کے لیے کہ بھائی کافر کو کیوں سزا ملے گی، تو اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو اس کا جواب تو پھر بھی آسان ہے کہ بھائی کافر جو ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ماننے سے انکار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں نا اللہ تعالیٰ کو ماننے کا انکار جو ہے وہ اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے وجود کا جو ہے وہ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی جو سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ سمجھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خمیر میں ڈالی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انسان کے خمیر میں ڈالی ہوئی ہے، یعنی جو ہماری فطرت بنائی اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ نے اپنے وجود کا استحضار رکھ دیا ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی انسان اللہ کے وجود کا انکار کر نہیں سکتا. تو زبان سے جو کرتا ہے وہ صرف جھوٹ بولتا ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اپنے ذات کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ کو ان سے اس سے کم بنانا، ٹھیک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کو کامل ماننے کی بجائے اس کو ناقص ماننا، ٹھیک ہے، کہ اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی ہے، 100% اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں ہے بلکہ 99% ہے، یا 98% ہے، یا 60% ہے، اور باقی جو قدرت ہے ठीक है, बाकी जो काम है वो अल्लाह ताला दूसरों की मदद से करते हैं, ठीक है, इसी को शिर्क कहते हैं। सही, तो जो काफिर होता है वो दरअसल अल्लाह ताला के साथ शिर्क करता है कि अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत ये कामिल नहीं है बल्कि नाकिस है, तो इस वजह से उसको फरिश्तों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कोई काफिर ये कहते हैं, फरिश्तों को शरीक ठहराते हैं, कोई काफिर जो है वो मुख्तलिफ इंसानों को शरीक ठहराते हैं कि इन इंसानों की मदद से अल्लाह ताला का निज़ाम चलता है, कोई काफिर जो है वो अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं कि अल्लाह ताला को बेटे की ज़रूरत है, यानी अल्लाह ताला का बेटा है। क्या मतलब भाई, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही होती है, राइट, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ मौजूद ही नहीं होती, ठीक है, ये नीड के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। तो बेटा है का मतलब बेटे की जरूरत थी, ठीक है, तो बेटा भी जो है वो अपने बाप की मदद कर रहा होता है, उसका मददगार होता है। तो शिर्क किसी भी शक्ल में हो वो अल्लाह ताला की कुदरत को कामिल से गिरा करके नाकिस बनाना होती है, और ये चीज इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ताला को ये बात इतनी नापसंद है कि ऐसे बंदे को फिर अल्लाह ताला अजाब, हमेशा हमेशा के अजाब का मुस्तहिक बना देते हैं। तो काफिर के अजाब की बात तो समझ में आ भी जाती है कि उसको क्यों हमेशा हमेशा के लिए अजाब होगा, लेकिन ईमान वाले को जो अजाब होता है या सजा होती है तो वो बात समझना और मुश्किल काम, क्योंकि ईमान वाला तो अल्लाह ताला को मानता है, अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराता, अल्लाह ताला की कामिल कुदरत में नुक्स नहीं पैदा करता। हाँ, कोताहियां कर जाता है अमल के अंदर, लेकिन अकीदा तो उसका ठीक होता है ना, तो इस वजह से अल्लाह ताला सवाल पैदा होता है कि मोमिन को क्यों सजा देंगे, तो उसका जवाब कल हमने आपके साथ इंटरेक्शन के साथ ये डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला मोमिन को इसलिए सजा देते हैं जब वो गुनाह का काम करता है, नाफरमानी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दिया है, ठीक है। अब जुल्म होता है कि जिसको जितना मिलना चाहिए ना उसको उतना ना मिले, तो भाई अगर अल्लाह ताला गुनाहगार को भी वही नेमतें दे दें जो कि एक नेकोकार को देते हैं, तो ये नेकोकार के साथ भी जुल्म है, क्योंकि उसने जो तकलीफें उठाई हैं नेकी करने में, तो वो तकलीफें तो गुनाहगार ने नहीं उठाई हैं, तो आप गुनाहगार को भी अगर उसी तरह की नेमतें दे दें जो कि नेकोकार के देते हैं, तो फिर तो नेकोकार के ऊपर जुल्म है ना, और अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम किया है, अल्लाह ताला किसी के साथ जुल्म नहीं करते, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक तो बात हो गई नेकी करने के ऊपर, ठीक है, तो भाई नेकी करने में फिर भी ये सवाल पैदा हो सकता है दिल में कि चलो भाई नेकोकार मोमिन जो होता है वो अगर 2 रकत सवा यानी वो जो है बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता है, तो उसको नमाजों के पढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा नेकियां अल्लाह ताला दे दें, और एक ऐसा मोमिन जो कि नेकियां नहीं करता तो उसको थोड़ी कम नेकी उसको थोड़ा कम सवाब दे दें, ठीक है, तो सजा देने की तो जरूरत फिर भी नहीं है ना, राइट भाई, उसको ज्यादा सवाब दे दें इसको कम सवाब दे दें, उसको ज्यादा नेमतें दे दें इसको कम नेमतें दे दें, ठीक है, तो इसमें भी कोई सजा वाली बात तो नहीं आती, तो हम भाई छोटी छोटी नेमतों पे राजी हो जाएंगे, ठीक है ना, हम खुश हैं हमें छोटी ही जन्नत की नेमतें मिल जाए, हमें नहीं चाहिए जी बहुत ज्यादा नेमतें, हम छोटी नेमतों पर खुश हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर बात सजा की हो रही है, सजा क्यों देते हैं, तो सजा जो है वो नेकियां कम करने के ऊपर नहीं मिलती, नेकी कम करने के ऊपर सजा नहीं मिलती, सजा जो है वो नाफरमानी करने पर मिलती है, राइट, गुनाह करने पर मिलती है, और जो रूहानी बीमारियां होती हैं जैसे यानी तकब्बुर, राइट, इस तरह की चीजों के ऊपर सजा मिलती है ना, सजा जो है वो नेकी कम करने के ऊपर नहीं मिलती। तो जो नेकोकार होता है, मुत्तकी परहेजगार, ठीक है, वो सिर्फ नेकियां ज्यादा नहीं कर रहा होता, इस वजह से वो नेकोकार नहीं कहलाता, बल्कि असल डेफिनेशन नेकोकारी की ये है कि वो गुनाहों से बचता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, और अल्लाह की नाफरमानी से बचना जो है ये भी एक बहुत मुश्किल काम है, बल्कि असल मुश्किल काम तो यही है, नेकियां करना इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, गुनाहों से बचना असल मुश्किल काम होता है। तो जब इसने इतनी एड़ी चोटी का जोर लगा करके अपने आप को गुनाहों से बचाया है, झूठ से बचाया है, बेहयाई से बचाया है, बेपर्दगी से बचाया है, खिलाफ सुन्नत कामों से बचाया है, तो اس کو کیوں نہ وہ مقام ملے جو کہ ایسے شخص کو نہیں مل سکتا جس نے کہ یہ ساری محنتیں نہیں کری ہیں, گناہ سے بچانے کی محنت نہیں کری ہے. تو اس وجہ سے نا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا, کوئی جو ہے وہ قربانیاں نہیں دیتا, تو وہ پھر اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیتا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ ظلم کے خلاف ہی جاتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو محنت نہیں کرتا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی شکل کے اندر سزا دیتے ہیں. اور ایمان والے کی سزا کے بارے میں آخری بات یہ تھی کہ ایمان والے کی جو سزا ہوتی ہے وہ بھی الٹیمیٹلی اس کے لیے فائدے کا ہی سبب بن جاتی ہے, اس لیے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے نا, کہ وہ مانتا ہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ٹھہراتا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتا ہے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے گناہوں کے دھلنے کا سبب بن جاتی ہیں, وہ اس کے پروردگار کی طرف پلٹنے کا سبب بن جاتی ہیں, اس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ گہرائی پیدا ہو جاتی ہے اور رجوع اس کا بڑھ جاتا ہے. اس کے اوپر آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سزا اور آزمائش میں کیا فرق ہے, تو اس کا مختصراً یہ کہ سزا جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جس مصیبت کے نتیجے میں بندہ پروردگار سے پہلے کے مقابلے میں مزید دور ہو جائے, ٹھیک ہے, یعنی اس کے رجوع اللہ کے اندر اور کمی آ جائے, اور غافل ہو جائے, اور اس کی عبادتیں جو ہیں وہ کم ہو جائیں, اور جو ہے وہ ناشکری کے کلمات کرنا پہلے کے مقابلے میں کہنا شروع ہو جائے, تو اس مصیبت کو سزا کہتے ہیں. اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں بندہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی نگاہ جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی طرف جاتی ہے کہ کیا مجھ سے غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا توبہ کے نتیجے میں ضروری ہے کہ توبہ کی وجہ سے اس کا رجوع اللہ بڑھتا ہے, ٹھیک ہے, توبہ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے کو, تو اللہ کی طرف وہ دل سے پلٹتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے, توبہ طائب ہوتا ہے, معافی تلافی کرتا ہے, اور پھر کچھ عبادتیں بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, کچھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ سزا نہیں تھی بلکہ یہ جس کو کہتے ہیں آزمائش کا لفظ اصطلاحاً جس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو کہ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں کہ جی یہ درجات بڑھانے کے لیے آئی تھی, ٹھیک ہے, لیکن یہ درجات بڑھانے والا جو لفظ ہے نا یہ بھی ہمیں اتنا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے لیے, یہ دوسروں کے لیے استعمال کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ بھئی فلاں شخص کے اوپر جو ماشاءاللہ عالم ہے, شیخ ہے, متقی پرہیزگار ہیں, نیک ہیں, دین کا کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر جو مصیبت آئی ہے نا یہ ان کے درجات بڑھانے کے لیے آئی ہے, ٹھیک ہے, اپنے اوپر جب مصیبت آئے تو یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ یہ مس لیڈنگ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ میرے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ میرے درجات بڑھانے کے لیے آئی ہے, نہیں, یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کیونکہ ان الفاظ کے اندر تکبر ہے, ان کے اندر خود پسندی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ میرے اوپر جو یہ مصیبت آئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع دے رہے ہیں, مجھے اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اور میں پر اللہ تعالیٰ سے جڑوں گا, میں توبہ کروں گا, میں اپنے گناہوں کو چھوڑ کر کے جو ہے وہ نیکیاں کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ظلم کا بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت کے حالات بیان کرتے ہوئے کہ ہم و ازواج ہم فی ظلال علی الارائک. تو یہاں پر بات ہوئی تھی کہ یہ جو جنت میں ایمان والے ہوں گے تو وہ اپنی ازواج کے ساتھ ہوں گے. تو یہاں پر بات کری تھی کہ ازواج کا جو ساتھ ہے یہ جنت میں کیسے ہوگا, کیونکہ جنت کے اندر تو اعمال کے بدلے میں جگہ ملتی ہے, نعمتیں ملتی ہیں, جتنے جس نے اعمال کیے ہوں گے ہر عمل کے بدلے میں اس کو جنت کا ایک نعمت ملے گی. حتیٰ کہ یہ بھی بات ہم نے سورہ یاسین ہی کی تفسیر میں ڈسکس کری تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ مفسرین کی یہ بھی ہے کہ اعمال کو کنورٹ کر دیا جائے گا, اچھے اعمال کو نعمتوں میں کنورٹ کر دیا جائے گا اور برے اعمال کو سزاؤں میں کنورٹ کر دیا جائے گا, ٹھیک ہے, یعنی حدیثوں سے بات ثابت بھی ہے, حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر استدلال بھی کیا ہے کہ بھئی جو جس مال کی زکات نہیں ادا کی جائے گی تو وہ مال جو ہے وہ سانپ بن جائے گا, یہ نہیں کہ اس مال کو الگ رکھ دیا جائے گا اور اس کے بدلے میں سانپ دے دیے جائیں گے, نہیں, بلکہ وہ مال ہی کنورٹ ہو جائے گا سانپ کے اندر, ٹھیک ہے, اسی طرح سے بہت ساری احادیث سے پتہ لگتا ہے. تو بھئی جب اعمال کے بدلے میں جگہ ملنی ہے تو بھئی شوہر کے اعمال تو اس کے ذاتی اعمال الگ ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے ذاتی اعمال کرتا ہے, اور بیوی کے اعمال الگ ہوتے ہیں, और उमूमन जो है वो देखा गया कि जी मर्दों को अल्लाह ताला ने मौके ज्यादा दिए हैं अमाल करने के, ठीक है, और वो अमाल कौन से वाले, जिहाद वाला अमल, ठीक है, जो कि बाहर जाकर के लड़ने का अमल होता है, ये तो औरतें नहीं कर सकती। और फिर दावत और तबलीग वाला अमल, ये भी जो है अल्लाह ताला ने मर्दों की जिम्मेदारी लगाई है, औरतें जो है वो एक महदूद कॉन्टेक्स्ट के अंदर दावत और तबलीग कर सकती हैं, लेकिन पूरे मुआशरे में बैठ उठ करके दावत और तबलीग करना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं लगाई अल्लाह ताला ने, और अगर करेंगी तो उसके अंदर फिर मफासिद जो है वो ज्यादा उसके अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये मर्दों का काम है, और दावत और तबलीग के नतीजे में जैसे कि पीछे हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि आप किसी एक बंदे को नेकी की तरफ बुलाते हैं तो अब वो जितनी नेकियां करेगा आपके बुलाने की वजह से आपको उसकी भी नेकियों का सवाब मिलेगा, राइट, और उसके बाद वो किसी और को बुलाएगा उसकी नेकियों का सवाब उसको मिलेगा और टोटल नेकियों का सवाब आपको मिलेगा। तो ये तो एक पिरामिड सिस्टम है, या इसको तो हम समझ भी नहीं सकते कितना ज्यादा नेकियां दावत और तबलीग करने वालों को मिलती हैं, ठीक है, तो ये तो औरत को तो नहीं मिल रही, ठीक है, तो मर्द को जो मिल रही है तो मर्द का मुकाम जन्नत के अंदर कहाँ पहुंचा हुआ होगा और औरत का मुकाम तो उसके बहुत ही नीचे होगा, क्योंकि उसने तो ना जिहाद किया ना उसने जो है वो दावत और तबलीग का काम किया। तो फिर ये अपनी बीवियों के साथ कैसे होंगे या बीवियां उनके साथ कैसे होंगी, तो इसके लिए कल समझाया था कि अमल जो होता है वो सिर्फ इस तरह का टेंजिबल अमल नहीं होता जिसको कि हम अपनी निगाहों से देखते हैं, जैसे एक शख्स जो है वो नमाजें पढ़ रहा है तो अब हमें नजर आ रहा है उसका नमाजें पढ़ना, एक शख्स अपनी जेब में से पैसे निकाल करके गरीबों को दे रहा है या खाना जो है वो खिला रहा है, तो ये टेंजिबल अमाल होते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ इन टेंजिबल अमाल ही के बदले में नेकियां मिलती हैं या जन्नत का मुकाम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे अमाल भी होते हैं जो कि इस तरीके से फिजिकली हम परसीव नहीं कर सकते, टेंजिबल जिनको अंग्रेजी जुबान में नहीं कह सकते, यानी अपनी मुशाहदे के जरिए से हमें बज़ाहिर वो अमाल नजर नहीं आते, लेकिन वो अमाल फिर भी नेकियों का बायस बनते हैं। वो अमाल कैसे होते हैं, ये इनटेंजिबल अमाल क्या होते हैं, जैसे कि बीवी जब अपने शौहर को सपोर्ट करती है, वो उसको इनेबल करती है यानी उसको मदद करती है कि वो बाहर निकल के दावत और तबलीग का काम करे, मैं घर के मामलात संभाल लूंगी, मैं बच्चों को संभाल लूंगी, मैं घर के अंदर बुजुर्गों का जो है वो ख्याल कर लूंगी, आप जाइए जाकर के दावत और तबलीग का काम करें, आप जाइए जाकर के जो है जिहाद का काम करें। तो ये जो सपोर्ट करने वाला अमल होता है, तो ये सपोर्ट करने वाला अमल भी अल्लाह की निगाह में टेंजिबल होता है, अगरचे के हमारी निगाह में ये टेंजिबल नहीं होता। तो इस के बदले में बीवी को वो कुछ मिल रहा होता है कि जो कि उसको खाविंद के बराबर खड़ा कर देगा कयामत के दिन, जन्नत में खाविंद के बराबर पहुंचा देगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक्चुअली कल मेंशन नहीं किया था, लेकिन पिछली क्लासों में जो हमारी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बात सुनी है क्लासों के अंदर, कि ये जो सपोर्ट करना है ना, ये शर्त है कि बीवी जो है वो खाविंद के बराबर में कैसे पहुंचेगी, जब वो उसको सपोर्ट कर रही होगी, ठीक है। अगर सपोर्ट नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं करने का मतलब क्या कि भाई आप मुखालिफ हैं, आप जो है वो करने नहीं देना चाहते, ठीक है, तो फिर आपको वो जजा नहीं मिलेगी। और इसी का दूसरा रुख ये है कि भाई कि यानी आप जो है वो मुखालिफत कर रहे हैं उल्टा, ठीक है, तो फिर आप क्यों फ्री में खामखा आपको ऐसी जन्नत का मुकाम मिल जाएगा, तो मुखालफत करने के ऊपर तो मुकाम नहीं मिलता, मुकाम तो मिलता है सपोर्ट करने के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये सपोर्ट करना जो है वो मुख्तलिफ घरों के अंदर मुख्तलिफ दर्जों का हो सकता है ना, कहीं पर सपोर्ट करना बड़ा यानी आसान काम है, कहीं पर सपोर्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, तो सपोर्ट का भी दर्जा जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी के घर के अंदर एक बच्चा है, बीवी जो है वो उस एक बच्चे को संभालेगी कि शौहर जाकर के बाहर दावत और तबलीग का काम करे, तो क्या इस बीवी को सिर्फ एक बच्चा संभालने के ऊपर जन्नत का वो मुकाम नहीं मिलेगा जो कि किसी दूसरी बीवी, किसी दूसरे शौहर की किसी दूसरी बीवी को, अगर उसके घर में पांच बच्चे हैं, ठीक है, पांच बच्चों को वो संभाल रही है और घर के अंदर बुजुर्ग भी हैं, तो ये जो बीवी है ये पांच बच्चों को संभालती है और बुजुर्गों को संभालती है और शौहर से कहती है कि जी आप करें दीन का काम, आप करें क्लासेस, आप करें जो है वो लोगों के साथ मुलाकातें, ठीक है, तो अब इस बीवी को जन्नत का मुकाम तो चले जी पांच बच्चे प्लस बुजुर्ग, ठीक है, इनके संभालने के ऊपर इस बीवी को जन्नत का मुकाम मिलना तो चलो जी समझ में आता है, ठीक है, लेकिन जो बीवी जो है वो सिर्फ एक बच्चा संभाल रही है और कुछ नहीं कर रही, ना तो उधर बुजुर्ग हैं, ना उधर दूसरे मसले हैं, बस एक बच्चा संभाल रही है, तो उसको क्या, उसको भी जो है वो दावत तो तबलीग करने वाले शौहर के बराबर में मुकाम दे दिया जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा? इसका कोई जवाब अगर आप ऐसे दे, क्या ये दोनों बीवी अपने शौहरों के बराबर में पहुंच जाएंगी, या सिर्फ 5 बच्चे और बुजुर्ग वाली बीवी अपने शौहर के बराबर पहुंचेगी और 1 बच्चे वाली बीवी अपने शौहर के बराबर नहीं पहुंचेगी? क्यों? क्या ये दोनों शौहर के बराबर का मुकाम पा लेंगे जन्नत में, या वो पाएगी और ये नहीं पाएगी, क्योंकि इसने तो कम मेहनत करी है, उसने ज्यादा मेहनत करी है? क्या होगा, नहीं पाएगी या पाएंगी, बराबर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी? इसलिए कि इस पर इतना ही बोझ अल्लाह ताला की तरफ से पड़ा। 2 नंबर बीवी नहीं, इसको 2 नंबर बीवी ना कहें, वो तो खैर 2 नंबर बीवी यानी सेकंड वाली जो बीवी है वो शौहर जितना मुकाम पा लेगी। ठीक है जी, वो भी पा लेगी, बिल्कुल सही है। दोनों की नियत एक ही थी, दोनों पहुंच जाएंगी, हाँ पाएगी, अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा के लिए करी, नियत एक ही थी। ये सारे जवाब जो है ना ये बीवियों की तरफ से हैं, तो जाहिर है यही जवाब आने चाहिए थे। ठीक है, मेहनत शर्त नहीं, खुलूस शर्त है, नियत पर डिपेंड करना करेगी। शोहर की गलती और कोताहियों को देखते हुए मदद की। ठीक है, एक जवाब बहुत अच्छा जवाब जो था ना वो ये था कि इसलिए कि उस पर जो बोझ पड़ा है वो अल्लाह की तरफ से पड़ा है। भाई किसी के ऊपर 5 बच्चों और बुजुर्गों का बोझ पड़ा तो वो अल्लाह की तरफ से पड़ा ना। ठीक है, तो उसमें कोई उसका अपना जाति कमाल तो नहीं है। ठीक है, उसी तरह जिसके ऊपर सिर्फ 1 बच्चे का बोझ पड़ा तो ये भी इसका कोई जाति नुकसान, जाति इसका फेल तो नहीं है कि 1 बच्चे का बोझ पड़ा, ये तो अल्लाह की तरफ से है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा जवाब है। ठीक है, पहली बीवी शुक्र करे और दूसरी सब्र करे, पहली वाली शुक्र करे, उसके ऊपर तो ज्यादा काम पड़ा है, जो भी है। ठीक है, अच्छे जवाब हैं, लेकिन ये जो असल मसला है ना, असल मसला जो है वो ये नहीं कि कितना बोझ पड़ रहा है, वो तो है, जितना बोझ पड़ेगा तो उतना ज्यादा मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला उतना ज्यादा खुश होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो लव्ज सपोर्ट करना है, ये जो लव्ज है ना सपोर्ट करना, बीवी का शौहर को सपोर्ट करना, ये मुतलकन सपोर्ट करना आसान काम नहीं है। ये नहीं फर्क पड़ता कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितना कितने जो है वो बच्चे हैं, कितने जो है वो मुश्किलात हैं, नहीं, चाहे कोई मुश्किल भी ना हो आपके ऊपर, लेकिन बीवी का शौहर को सपोर्ट करना ये मुतलकन, ये खुद बजाते खुद मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? नहीं, एक ही शौहर की दो बीवियों की बात नहीं हो रही, दो अलग शौहर हैं, दो अलग बीवी हैं, तो ये जो खुद है ना सपोर्ट करना, ये मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल काम है? जैसे कि उन्होंने जवाब दिया कि बीवी के सामने शौहर की असल शख्सियत खुलती है, बीवी के सामने शौहर की गलतियां कोताहियां खुलती हैं, बाहर वालों पर नहीं खुलती। बाहर वालों को तो जी वो शेख साहब नजर आ रहे होते हैं, बाहर वालों को दीजिए वो मौलाना साहब नजर आ रहे होते हैं, सूफी साहब नजर आ रहे होते हैं, मुत्तकी परहेजगार नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि उनकी लंबी सी दाढ़ी होती है और जो है वो उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ होता है और मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ते हैं और जो है वो बड़े बावकार नजर आते हैं, राइट, और बड़े अच्छे अच्छे बयान भी कर देते हैं। तो बाहर वालों तो बाहर वाले तो बड़ी आसानी से कन्विंस हो जाते हैं ना, बाहर वालों के सामने से तो जो ऐप जो है वो ज्यादातर छुपे हो रहते हैं, कुछ खोल भी देते हैं अल्लाह ताला, ज्यादातर ऐप जो है वो छुपे होते हैं, बीवी के सामने नहीं छुपे हुए होते ऐप। बीवी के सामने तो हर किस्म के ऐप जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर अल्लाह बंदा जो है ना वो अपने आप को नहीं बचा, नहीं छुपा सकता। ठीक है, तो बीवी चाहे जैसा भी शौहर हो, कितना ही नेक मुत्तकी परहेजगार शौहर क्यों ना हो, बीवी के सामने उसके ऐप फिर भी खुले होते हैं। लेकिन अगर वो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर, दीन की खिदमत की खातिर उन ऐबों को नजरअंदाज करके फिर भी शौहर को सपोर्ट करती है ना, ये बड़ी बात है, ये असल बात है, क्योंकि ये उसके नफ्स के ऊपर बहुत ज्यादा भारी गुजरता है। बेशक उसका एक भी बच्चा ना हो, बच्चों की बात ही छोड़ दें, बुजुर्गों की बात ही छोड़ दें, राइट, जस्ट द फैक्ट कि वो इन ऐबों का इल्म रखने के बावजूद उस मर्द को सपोर्ट करती है, उस मर्द की मदद करती है दीन की खिदमत के लिए, अल्लाह की रजा के कामों के लिए, राइट, तो ये जो बात है ना, ये उस बीवी को इस का मुस्तहिक बना देती है कि उसके अमाल कितने ही थोड़े क्यों ना हो, वो वही मुकाम पा रहे जो कि उसके शौहर का मुकाम है। ठीक है। उसके अलावा ये बात हुई थी कि अमाल जो है वो तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि शौहर जो है वो कम अमाल कर पाता हो अपनी जॉब की वजह से, अपने तिजारत कारोबार की वजह से, क्योंकि जिम्मेदारियों की वजह से उसको करना पड़ता है, लेकिन बीवी जो है वो घर के अंदर बैठ करके खूब इबादतें करती हो। इसलिए कि कुछ बीवियां ऐसी भी तो होती हैं ना जिनके कोई बच्चे नहीं होते, जिनके बच्चे अभी पैदा ही नहीं हुए, या जिनके सास ससुर का जो है वो इंतकाल हो चुका है, तो अब जो है वो घर के अंदर फारिग है, तो घर में खूब इबादतें कर रही हैं, या जिनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, बड़े होने के बाद अब बच्चों के साथ वैसी मशगूलियत नहीं होती जैसे कि बचपन में होती है, तो बड़े होने के बाद बीवियां खूब इबादतें कर सकती हैं। ठीक है। इसी वजह से हमारे हजरत जो है वो लड़कियों को हिफ्स कराने से मना नहीं करते, बल्कि इनकरेज ही करते हैं, क्योंकि लड़कियों ने अगर बच्चियों ने हिफ्स कर लिया होता है ना अपने बचपन में कुरान का, तो जब वो उस उम्र को पहुंचती हैं जिस उम्र में उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, और खुसूसन वो फिर उस जो औरतों के अय्याम होते हैं उनसे भी बाहर निकल आती हैं, तो अब उनके पास वक्त ही वक्त होता है, वक्त ही वक्त होता है। ठीक है। तो अब अगर उन्होंने कुरान का हिफ्ज किया हुआ होगा या बचपन में उन्होंने दीन की तालीम हासिल कर ली होगी ना, तो अब ये हिफ्ज कुरान जो है वो उनको उस वक्त काम आएगा, और उस वक्त वो कुरान के साथ वापस जुड़ जाएंगी और अपना वक्त जो है वो अल्लाह के जिक्र में, दीन के इल्म में और कुरान में लगाएंगी, बजाय इसके कि उस वक्त जब उनके पास फारिग टाइम होता है तो अब वो इधर उधर लगाई भुजाई करना और इधर उसको तकलीफ देना और उससे जो है वो काम निकलवाना और उसके जो है वो पीछे पड़ जाना, इन हरकतों की बजाय वो बच्ची जो है जब बूढ़ी हो जाएगी या बड़ी हो जाएगी, फारिग टाइम हो जाएगा उसके पास, तो अब जो है वो इन कामों के अंदर लगेगी, तो उसका बुढ़ापा हसीन हो जाता है, उसका बुढ़ापा जो है वो बहुत ज्यादा यानी कीमती बन जाता है। ठीक है। तो इस वजह से ये डिस्कशन नहीं है कि जी कितना मेहनत करनी पड़ती है बीवी को, बल्कि असल जो आजमाइश होती है, असल जो इम्तिहान होता है ना, वो अपने नफ्स को दबाना और उसको दबा करके अल्लाह की रजा की खातिर जो है वो अपने शौहर को सपोर्ट करना, ये है असल कुर्बानी। और इस कुर्बानी के ऊपर फिर बीवी को वही दर्जा मिल जाता है जो कि वो अपने अमाल से नहीं पा सकती है। और दूसरा फिर वो मोहब्बत वाली बात भी हुई थी कि जो शोहर जो है वो अमाल नहीं कर सकता, लेकिन बीवी जो है वो अमाल करती है क्योंकि उसके पास फारिग वक्त होता है, तो चूंकि उस बीवी को शोहर से मोहब्बत होती है, तो इस वजह से कयामत के दिन जो है ना इस शोहर को कम अमाल के बावजूद जो है वो इस बीवी के साथ ही रखा जाएगा, क्योंकि ये बीवी जो है वो अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली बीवी है। ठीक है। और एक ईमान वाली बीवी की यही पहचान होती है कि वो अल्लाह ताला के फराइज हुकूक अदा करती है और अपने शोहर से मोहब्बत करने वाली बीवी बीवी होती है। इसके ऊपर किसी ने सवाल भेजा था बाद में क्लास के, जो कि मैंने एक ही दफ़ा सुना, सही तरह से सुन नहीं सका था, तो अगर कोई कमी कोताही हो तो आप इसलाह कर दीजिएगा कि अगर कोई बीवी या कोई शौहर जन्नत में दाखिल हो ही ना सका, ठीक है, तो उसका जो जौज है उसको तो फिर कोई और अता कर दी जाएगी या कोई और अता कर दिया जाएगा, ये भी कल बात हुई थी। ठीक है। कि भाई बीवी जो है वो जन्नत में दाखिल ही ना हो सकी, तो फिर शौहर को किसी और बीवी के साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि जन्नत में दाखिल होने वाली है, और इसी तरीके से दूसरी तरफ भी। तो सवाल ये था कि जो जन्नत में दाखिल नहीं हुई बल्कि जहन्नुम में जाना पड़ा उसको, और फिर जहन्नुम से अपने गुनाहों की सजा भुगत करके फिर वो जन्नत में आई, ठीक है, तो फिर उसको कौन सा यानी फिर उसको कौन शौहर मिलेगा, क्या उसको वो उसका अपना वाला शौहर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसके ऊपर जो है ना एक बात तो ये जो मेरे दिल में आई वो ये थी कि भाई जो सवाल कर रही है ना, ठीक है, तो ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनके सवाल में अगर आप गौर करें तो इनको ज्यादा फिक्र जो है ना वो इस बात की नहीं लगती कि जहन्नुम में जाना पड़ेगा, ठीक है, कि बड़े लंबे अरसे जो है वो जहन्नुम में जाना पड़ेगा और जहन्नुम की सजाएं बर्दाश्त करके जो है वो फिर जो है जन्नत में आएंगे, इनको इसकी ज्यादा फिक्र नहीं लगती, बल्कि इनको इस बात की ज्यादा फिक्र लगती है कि जब बिल आखिर जन्नत में वापस आएंगे तो वो शौहर साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है, कि वो शौहर साहब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो तो ये जो सवाल है ना, इस सवाल के अंदर ही इसका जवाब है। और वो ये है कि जो बीवी ऐसी होगी ना कि जिसको अपने शौहर की इतनी फिक्र है कि वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर वो ईमान वाली होगी ना, अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में दाखिल ही नहीं करेंगे, तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह जहन्नुम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ताला वो शौहर अता फरमा देंगे। इसलिए कि शौहर से मोहब्बत करना ना, ये भी ईमान का हिस्सा है। तो ऐसी बीवी को जहन्नुम में जाना नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जो ऐसी है, ठीक है, कि जिसको के जो है ना वो, यानी इतने उसने बुराइयां करी हैं कि उसको जहन्नुम में लंबे अरसे जाकर के जलना पड़ेगा, तो भाई ऐसी बीवियां जो होती है ना, उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि वो शौहर के साथ रहे कि ना रहे। ठीक है, तो इसी हरकत की वजह से जो है वो उनको जहन्नुम में जाना पड़ेगा। और जब वो जहन्नुम से निकलेंगे ना, तो फिर वो शायद पुराना शौहर जो है उनका, उनको याद भी ना हो उस वक्त तक। ठीक है, और वो अपनी जिंदगी में मगन होगा, वो अलग जा चुका होगा। तो अब आपको जो है वो जब जन्नत में जगह मिल जाएगी ना, तो फिर जो जो भी होगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो भाई हमने जो है ना वो जहन्नुम के ऊपर तो राजी होना ही नहीं है ना। ठीक है, जहन्नुम के तो एक लम्हे को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम सेटल नहीं हो सकते इस बात के ऊपर कि चलो जी चंद साल जो है वो जहन्नुम के अंदर जल करके निकल आएंगे। हम नहीं, इस तरह की सोच ही ना रखें अपने अंदर। ठीक है, बस सिर्फ ये सोच रखनी है, हमने तो जन्नत में ही जाना है। ठीक है, और जन्नत में जाने के लिए जो अल्लाह ताला ने जो 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 शरायत रखी है, उन शरायत के ऊपर हमने पूरा करने की अपनी भरपूर कोशिश करनी है। और बस हमने बस इसी तरह का की सोच रखनी है कि जी जन जन जहन्नुम वगैरह का तो कोई, वी आर नॉट रेडी टू डिस्कस दैट। ठीक है, अपने लिए हमने इसी तरीके से मामला करना है। तमाम उयूब के बावजूद बीवी शोहर की दीन की दावत देने में रुकावट नहीं बनती। जी बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने बचपन हिफ्स किया और बीच में वो पक्का याद नहीं रहा रख पाए, तो उस उम्र तक वो भूल जाएंगे। नहीं, ये जो मामला होता है ना याद रखने वाला मामला, तो उसमें जो है ना पक्का याद रखने वाला, यानी सवाल ये कह रही है कि जिन्होंने, जिन बच्चियों ने बचपन में हिफ्स किया, तो जब वो थोड़ी सी बड़ी होंगी, फिर उनको अयाम आने शुरू हो जाएंगे, तो उनके लंबे लंबे गैप्स आने शुरू हो जाएंगे, फिर उनके जो है वो शादी हो जाएगी, तो शौहर की जिम्मेदारियां होंगी, कुछ ससुराल की भी जिम्मेदारियां हमारे कल्चर की वजह से अनफॉर्चुनेटली बीवियों के ऊपर डाल दी जाती हैं, हालांकि उनकी जिम्मेदारी होती नहीं है। फिर उसके बाद उनके बच्चे अल्लाह ताला उनको देंगे, तो बच्चों की जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि 24 घंटे का की एंगेजमेंट होती है, तो ऐसे में वो अपने हिफ्स को कैसे बरकरार रखेंगी। तो उसका जवाब ये है कि हिफ्स को बरकरार रखने का जो मतलब होता है ना, वो महज ये नहीं होता कि आपको ऐसा याद रहे कि आप अभी आप खड़े होकर के तरावी में कुरान सुना सकें, ये मतलब नहीं होता। ठीक है, कि भूल गए अब तरावी में कुरान ही सुना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हिफ्स को याद रखने का मतलब ये होता है कि इंसान कुरान के साथ अपने रिश्ते को जोड़े रखे, और नाजरा कुरान जो है वो पाबंदी के साथ पढ़ता रहे। जब अय्याम आते हैं औरतों के, उस वक्त वो नाजरा भी नहीं पढ़ सकती, लेकिन जैसे ही अय्याम खत्म होते हैं, वैसे ही वो नाजरा कुरान जो है वो जारी रखें अपना। अगर वो हिफ्ज कर चुकी होंगी, तो उनका नाजरा जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाया करेगा। एक हाफिज के लिए और हाफिजा के लिए 3 पारे रोजाना पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, उसकी स्पीड इतनी बन चुकी होती है कि वो आसानी के साथ 3 पारे पढ़ सकती है। ठीक है, तो 1 पारा पढ़ भी अगर रोजाना पढ़ ले, 3 ना भी पढ़े, तो भी उसका नाजरा जो है ना वो चलता रहेगा। और ये होता है अपने कुरान को महफूज करना। ठीक है, अगर आप ये काम करते रहे, तो आप कुरान भुलाने वालों में शामिल नहीं होंगे। अगर नाजरा का मतलब उम्मीद है लोगों को पता होगा, यानी जो देख करके पढ़ना होता है उसको नाजरा पढ़ना कहते हैं। अगर आप नाजरा का सिलसिला चलाते रहे, तो आप कुरान भूलने वालों में शामिल नहीं होंगे। फिर क्या होगा, जब आपकी उम्र वहां पहुंच जाएगी, जब आपके पास वक्त होगा, तो अब इस नाजरा की बुनियाद पर आप अपने हिफ्ज की दोहराई शुरू करेंगी। वो दोहराई जो है वो आपको कुरान जो है ना फिर से याद करवा देगी। और वो याद करवाना जो है वो, जैसे हाफिज लोग होते हैं, उनको पता है कि अगर आप 1 हफ्ते के लिए भी छोड़ दें, तो भी आपका कच्चा हो जाता है। 1 महीने के लिए छोड़ दें, तो और कच्चा हो जाता है। ठीक है, तो कच्चा होने का मसला नहीं है, कच्चा होने का बहुत بہت آسان حل ہے کہ اب آپ جو ہے وہ پکا کرنا شروع کر دیں, دور کرنا شروع کر دیں, تو وہ عورت جو ہے نا وہ بڑی عمر میں پہنچ کر کے دور کرنا شروع کر دے گی اور اس کا قرآن جو ہے نا وہ پھر سے پکا ہو جائے گا. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈسکریج فیل کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے, نہ اپنے بچیوں کو حفظ سے روکنے کی ضرورت ہے. البتہ یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ہر انسان حفظ نہیں کرتا, حفظ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, یہ مستحب کام ہے. ٹھیک ہے, تو نہ تو ہر لڑکا حفظ کر سکتا ہے اور نہ ہی ہر لڑکی حفظ کر سکتی ہے. تو ہم صرف ان لوگوں کی بات کرتے ہیں, کر رہے ہیں یہاں پر, کہ جو کہ حفظ میں چل سکتے ہیں, اور یہ استاد بتاتا ہے. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو لگاتے ہیں نا, شروع میں چند پارے یاد کروانے کی کوشش کریں, تو اس دوران استاد کو پتہ لگ جاتا ہے اور والدین کو بھی اچھا خاصا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ حفظ میں چلے گا یا نہیں چلے گا. اگر وہ چل پڑتا ہے نا حفظ میں, تب اس کو حفظ کروائیں, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ نہیں چل پا رہا فار وٹ ایور ریزنس, اس کی اپنی پرسنالٹی ایسی ہے یا حالات ایسے نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس کو حفظ نہ کرائیں, کیونکہ یہ فرض واجب نہیں ہے. ایمان بچانا فرض ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فرض ہے, حفظ کرنا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ چل پڑتا ہے تو اس وجہ سے اس کو حفظ سے نہ روکیں کہ یہ تو لڑکی ہے, یہ آگے جا کر کے کیسے اس کو کنٹینیو کرے گی, تو اس وجہ سے اس کو حفظ نہ کراؤ. نہیں, اس وجہ سے نہ روکیں. تو اس کی ایک آپ کو ایکسپلینیشن ساجد نے دے دی ہے, امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. کیا انسان کی پرسنالٹی وہی ہوگی جو دنیا میں ہوگی, ہسبینڈ اینڈ وائف کی پرسنالٹی سے کیا مراد ہے؟ مطلب پرسنالٹی کا مطلب تو پھر مختلف چیزیں جاتی ہیں نا. ایک ہوتی ہے کہ جی انسان کی مینٹل پرسنالٹی کیسی ہے, ایک ہوتی ہے انسان کی اسپریچول پرسنالٹی کیسی ہے, انسان کے اخلاق کیسے ہیں, انسان کے جو ہے عمل اینڈ بیہیویئر. عمل اینڈ بیہیویئر کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف عمل اور بیہیویئر ہیں, ٹھیک ہے, تو جنت کے اندر جب وہ پہنچ جائے گا نا بالآخر, تو وہاں پر جو ہے وہ تزکیہ ہو کر کے پہنچے گا. ٹھیک ہے, وہاں پر جو بد عملی یا راؤڈی بیہیویئر, یہ راؤڈی بیہیویئر اور بد عملی کے ساتھ کوئی مومن جنت میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو ان سب کا جو علاج ہے نا, یہ سب بیماریاں ہیں. راؤڈی بیہیویئر ہو, بد زبانی ہو, یا غصے کی تیزی ہو, یا جو کچھ بھی ہو, یہ ساری کی ساری روحانی بیماریاں ہیں. اور بد عملی یہ ان روحانی بیماریوں کے اثرات ہیں جو کہ انسان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان یہ سب کے سب پھر ان ادر ورڈز کیا ہیں, یہ نجاستیں ہیں, یہ امپیورٹیز ہیں. اور جنت جو ہے یہ پیور مقام ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر نجاست کے ساتھ کوئی انٹر نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے ایمان والوں کا تزکیہ جو ہے وہ جنت میں جانے سے پہلے ہو جائے گا. اب وہ دنیاوی سزاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے, جیسے پہلے بات ہو چکی, ٹھیک ہے, یا آخرت کے دن کی پریشانیوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, یا قبر کے عذاب کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کچھ عرصہ جہنم میں ڈبکی دلوا کر کے ہو سکتا ہے. وہ بھی تو ایک ہے نا, ایک فیکٹ کہ بھی جہنم میں بھی کچھ ایمان والوں کو جانا پڑ جائے گا. تو بہرحال جو کچھ بھی ہوگا وہ ہو کر کے جب وہ ان ساری چیزوں سے کلیئر ہو چکے ہوں گے تب وہ جنت میں جائیں گے. تو پھر اس وجہ سے بیویوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی اس شوہر کے ساتھ جو ہمیں اس دنیا کے اندر چیزیں جھیلنی پڑتی ہیں تو کیا ہمیں جنت میں بھی جھیلنی پڑیں گی؟ نہیں, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, جنت میں نہیں جھیلنی پڑیں گی. جنت کے اندر جو ہے وہ ان سے وہ پاک ہو کر کے داخل ہوں گے. اور اسی طریقے سے شوہروں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جن بیویوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب بیویاں نیک ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتی ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سناتی بھی تو ہے نا, رائٹ, بیویوں کا سنانا تو ختم نہیں ہوتا, رائٹ. بیویوں کے اپنی جو ہوتی ہیں وہ, یعنی وہ جو ہے بھائی ایک پارٹ آف بینگ اے وائف, رائٹ, تو وہ تو ختم نہیں ہوتی. تو اب اس وجہ سے نا وہ اس چکر میں نہ رہیں کہ جنت میں جو ہے نا وہ میں تو اس بیوی کے ساتھ نہیں رہوں گا بھائی, ٹھیک ہے, مجھے تو جو ہے نا بس دوسری بیوی چاہیے, مجھے تو بس حوری چاہیے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہ تو مجھے سناتی ہے. نہیں, آپ اس کے باوجود اس بیوی سے محبت کریں, کیونکہ یہ بیوی, یہ وہ بیوی ہے جو کہ اللہ نے آپ کو دی ہے, یہ آپ کے بچوں کی مائیں, یہ اگر آپ کو سناتی ہے تو کم از کم یہ آپ کے ساتھ پھر اور بھی تو اچھے کام بھی تو کرتی ہے نا, آپ کی خدمت بھی تو کرتی ہے نا, آپ کے کپڑے وغیرہ بھی تو دیکھ لیتی ہے, آپ کے لیے کھانا بھی تو پکاتی ہے نا, رائٹ, آپ کی عزت کا بھی تو خیال رکھتی ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ سارے کام بھی تو یہی بیوی کر رہی ہے نا. تو پھر آپ اس بیوی سے جان چھڑانے کی کوشش نہ کریں, ना दुनिया में कोशिश करें और ना जो है वो ये इरादा रखें कि जन्नत में मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, मैं कह दूंगा अल्लाह ताला को नहीं जी मुझे नहीं रहना इसके साथ। नहीं, ये बीवी जो भी जो है ना जब वहां पे पहुंचेगी ना तो इसका भी तस्किया हो चुका होगा, ठीक है। तो वहां पर ये इस यानी इस दहेज से पहुंचेगी कि ये हूरों की सरदार बन जाने के काबिल होगी उस वक्त। तो जब ये उस लेवल की हो चुकी होगी तो फिर आपको कहीं पशेमानी ना हो कि भाई इसको तो फिर इसके साथ ही रह लेता मैं भाई, तो खामखाई जो है वो मैंने इतना नुकसान किया, ये तो अब हूरों की सरदार बन चुकी है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये कि जो ईमान वाले शोहर और बीवियां होते हैं ना तो ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि जी शोहर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो उसका जो है वो क्या कहते हैं कि बस मस्जिद में दिल लगा हुआ है और अल्लाह से दिल लगा हुआ है, और ना तो उसका कोई बीवी के साथ ताल्लुक है ना उसका बच्चों के साथ कोई ताल्लुक है, और अल्लाह का वली जो है ना माशाल्लाह वो तो जन्नत में पहुंच जाएगा। नहीं, ईमान वाले की जो असल जो ईमान वाला होता है वो तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला होता है। अल्लाह के हबीब की सुन्नत जो है ये है असल दीनदारी, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम तो अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वाले थे, बच्चों से मोहब्बत करने वाले थे, ठीक है। चले जी, ये तो रिकैप में सारी क्लास खत्म होगी, और कोई चीज रहती थी कल के बारे में? तो जब ये ईमान वालों का तस्कर अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो उसके आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, के जो मुजरिम लोग हैं उनको जुदा हो जाने का हुक्म दे दिया जाएगा। जुदा हो जाने का हुक्म का मतलब ये कि जब शुरू में नफ़खे सानिया फूकी जाएगी तो उस वक्त तो सारे के सारे इंसान जिन हैवान जो है वो उठ खड़े होंगे और सब के सब जो है वो एक तरफ जो है वो हकाए जा रहे होंगे। तो उस वक्त जो है ना जब सारे एक जगह पे पहुंच जाएंगे और ये एक नई जमीन होगी, एक नया यानी एक नई अर्द होगी जो कि बिल्कुल फ्लैट होगी। ये जो जमीन जिस पे हम रहते हैं ना ये तो स्फेरिकल है ना, यानी एक गोल गेंद की शक्ल की चीज है, लेकिन वो जमीन जो है वो बिल्कुल चौड़ी फ्लैट इस किस्म की चीज होगी और उसके ऊपर कोई पहाड़ कोई दरख्त कोई इमारत कोई भी रुकावट नहीं होगी, ठीक है। तो मुफस्सरीन ने ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये बात हमें बताई कि लगता ऐसा है कि ये जो जमीन होगी ना ये एक नई जमीन होगी, ये वाली जमीन नहीं होगी जिसके ऊपर अभी हम लोग रहते हैं। ये वाली जमीन जिस पर अभी हम लोग रहते हैं ये जमीन तो एक्चुअली जहन्नुम बना दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये है भी जहन्नुम बनाने के लायक, क्योंकि इस जमीन के अंदर जो चीजें होती हैं इन्हीं की वजह से बंदा जो है वो अपने परवरदिगार से दूर होता है। तो गोया कि यही तो रिस्पॉन्सिबल है परवरदिगार से यानी बंदे को परवरदिगार से दूर करने की, तो अब ये डिजर्व भी करती है ना कि इसको जहन्नुम बना दिया जाए। तो इस वजह से जहन्नुम जो है वो इसी जमीन की चीजों को अल्लाह ताला जो है वो आग लगा करके जहन्नुम बना देंगे। तो फिर मैदान हशर की तरह कायम होगा, ये एक अलग जमीन पर कायम होगा। ये अलग जमीन जो है ये बिल्कुल जो है वो एक नई चीज भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस जमीन जिस प्लैनेट अर्थ के ऊपर हम रहते हैं इस जमीन के अंदर जो जो अच्छे मुकाम हैं उन अच्छे मुकाम को लेकर के जो है वो मैदान हशर बना दिया जाए। जैसे कि हदीसों से पता लगता है कि मैदान अराफात, अराफात का जो मैदान है ना ये तो अच्छे मुकामात में से एक मुकाम है ना, तो इस मैदान अराफात को जो है वो खींच तान करके मैदान हशर में तब्दील कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो होगी जमीन, तो वहां पर जब लोग पहुंचेंगे ना तो अब वहां पर जो है वो सबसे पहले जो है वो एक तमीज कर दी जाएगी, ठीक है ना, एक डिवीजन कर दी जाएगी। ये डिवीजन जो होगी ये होगी ईमान और कुफर की बुनियाद पर, ठीक है, ईमान वाले एक तरफ और कुफर वाले दूसरी तरफ, ठीक है। जिसे सबसे पहले डिवीजन ये वाली होगी। तो यहां पर जो आयत है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, तो यहाँ पर जो है वो इस वाले डिवीजन की बात हो रही है, और यही मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ईमान और कुफर वालों को सबसे पहले शुरू में सारे के सारे मिक्स होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जो है वो हिसाब किताब वाले मामलात वगैरह शुरू होंगे, जो भी खैर ये सारी एग्जैक्ट जो तरतीब है ना ये थोड़ी सी यानी इतनी वाजह जो है वो नहीं भी है, और कुछ उलमा ने तरतीब जो है लिखी भी है। बहरहाल अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अन ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। अब ये एक आयत जो है ना इसके ऊपर तो हमारी चंद क्लासें जो हैं वो गुजर सकती हैं, एक मिनट ठहर जाएं। अच्छा, चलिए इन सवालों का जवाब तो मेरे ख्याल में बाद में देना चाहिए। खैर, तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम, कि क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लेकर रखा हुआ था ए आदम की औलाद, अन ला ताबुदु शैतान, कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, इन्नहु लकुम अदुव मुबीन, क्योंकि वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहां पर अहद की बात हो रही है, अल्लाह ताला ने कौन सा अहद लिया? तो अल्लाह ताला ने जो अहद लिया है इसको योम अलस्त का अहद कहा जाता है, जिसमें अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रूहों को आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर हाथ फेर करके निकाला। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर से सारे के सारे इंसान निकले, और वो भी कैसे निकले, जिन लोगों ने बयान सुना होगा कुछ दिन पहले हुआ था कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनके जो डायरेक्ट औलादे थी, बेटे और बेटियां, वो सारी की सारी निकली। फिर उन बेटे बेटियों की पुश्त से उनकी बेटे बेटियां निकली, यानी आदम अलैहिस्सलाम के पोते पोतियां, राइट। फिर उनकी पुश्त से पड़ पोते और पड़ पोतियां आदम अलैहिस्सलाम की निकली, यानी ऐसा नहीं हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से डायरेक्टली जो है वो सारी की सारी इंसानियत निकली, बल्कि इंसानियत को अल्लाह ताला ने अपने वालिदैन, अपने वालिद की पुश्त से ही निकाला, ठीक है। ये नहीं कि अपने पर दादा जो जद्दे अमजद आदम अलैहिस्सलाम है उनकी पुश्त से हम डायरेक्ट निकल आए, नहीं, अल्लाह ताला ने वास्तों के साथ निकाला, ठीक है, बिना वास्ता नहीं निकाला। फिर जब सारे के सारे निकल गए तो फिर उन सब के सामने अल्लाह ताला ने खिताब फरमाया, और वो ऐसा खिताब था कि जिसमें सब के सब अल्लाह ताला को देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, ठीक है, यानी बिला हिजाब ये खिताब था। और इस खिताब में अल्लाह ताला ने ये पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उस वक्त ये सारी की सारी इंसानियत जो आलमुल अरवाह वाला वो जहान था वहां पर मौजूद थी, तो उस इंसानियत को अल्लाह ताला उस वक्त तक इतना शऊर दे चुके थे कि जिसकी बुनियाद पर इन सबको ये बात पता लग चुकी थी कि हमारा परवरदिगार यानी हमारा पालने वाला, हमारी जरूरियात को पूरा करने वाला वो यही रब है, ये इनको पता चल चुका था। तो इस बराह रास्त खिताब के जवाब में सारी की सारी इंसानियत ने जवाब दिया, बला या रब। इन सब ने कहा, कालू बला या रब, कि बेशक आप ही हमारे रब हैं, ठीक है। तो ये जो एक वादा था ना, इसी को जो है वो बाद में फिर
उनका
तो ये जो वादा था, इसी वादे के अंदर जो है ना, ये यानी था तो ये बहुत ही मुख्तसर वादा, ठीक है, यानी चंद अल्फाज ही है ना इसके अंदर, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, यानी अल्लाह ताला ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या रब का सवाल, ठीक है। तो बज़ाहिर यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो नहीं पूछी कि क्या तुम मेरी इबादत करोगे या इबादत नहीं करोगे, क्या तुम शैतान की इबादत करोगे या नहीं करोगे, राइट, ये सारी तफसीलात तो नहीं पूछी अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, का कोई अहद लिया था, ठीक है, लेकिन लफ्ज रब, ये रब का जो लफ्ज है ये इतना जामे है कि इसके अंदर फिर सारे वादे आ जाते हैं, सारी बातें आ जाती हैं, क्योंकि किसी को अपना रब मान लेना जो है ना वो यानी कवर कर लेता है इस बात को कि आप उसी को अपनी तमाम जरूरियात का सोर्स समझें, ठीक है, उसी की इबादत भी करें और उसकी अताअत भी करें, और उसका जो दुश्मन है, उसका जो मुखालिफ है, उसकी अताअत ना करें, सारी चीजें रब के लफ्ज के अंदर सिमट जाती हैं। यानी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अल्लाह ताला ने इंसानियत को दे दी थी कि उन्होंने खाली एक लफ्ज का इकरार करके तमाम बातों का इकरार कर लिया था, इन तमाम बातों का इकरार सिर्फ एक लफ्ज पर इकरार करके कर लिया था, ठीक है। तो अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते कि भाई हमसे, आपने चले रब होने का वादा तो ले लिया था और हमने आपके साथ कर लिया था, चले जी हम मानते हैं, लेकिन आपने शैतान की इबादत के बारे में तो कोई बात नहीं कही थी उस वक्त, है? तो हम शैतान की अगर इबादत करते हैं तो फिर हम तो कोई वादा खिलाफ ही नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो अल्लाह ताला जो है ना वो यानी समंदर में कुजे को समेट देना, ये तो इंसानों के बारे में कहा जाता है ना, जो परवरदिगार है तो वो कैसे एक लफ्ज के अंदर पूरी की पूरी मारिफत को कैसे नहीं समेट सकता? बिल्कुल समेट सकता है, अल्लाह ताला ने समेटा और हमारे अंदर ये सारा का सारा शऊर भी डाल दिया कि रब वो होता है कि जिसके दुश्मन की अताअत ना की जाए और उसकी अताअत की जाए, खाली सिर्फ रब की अताअत की जाए। दूसरी बात ये कि जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत ना करो, तो भाई शैतान की कौन इबादत करता है सिवाय उन चंद लोगों के जो के आज के दौर के अंदर एक फिरका बना के बैठे हुए हैं, उनको सेटन वर्शिपर्स कहते हैं, ठीक है? सेटनिज्म शायद उनके दीन का नाम होता है, और सेटन वर्शिपर्स जो है वो अपने आप को कहते हैं। तो ये लोग जो है ना एक शबी बनाते हैं, कोई बुत टाइप की कोई चीज बनाते हैं, कहते हैं ये शैतान है, और फिर उसके सामने सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज की जो उनकी शक्ल होती है वो करते हैं। तो ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत थोड़े से हैं, बाकी तो कोई भी शैतान की इबादत नहीं करता। तो अल्लाह ताला सारे इंसानों से, सारे काफिरों से क्यों कह रहे हैं कि जी तुम क्या तुमने वादा नहीं किया था? तो क्या चीज हकीकत इसकी क्या है? वो ये है कि इबादत जो है ये दर हकीकत होती क्या चीज है? इबादत जो है वो असल में सिर्फ अपना सर टेकने टेक देना नहीं होता, ठीक है? किसी के सामने रुकू कर देना सिर्फ ये इबादत नहीं होती, बल्कि इबादत का मतलब ये होता है कि किसी की मुतलकन अताअत करना, ऐसे अताअत करना कि उसकी अताअत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना हर दूसरे की अताअत के मुकाबले में, और दूसरों की अताअत को छोड़ करके इसकी अताअत करना, इसको इबादत कहते हैं। ये है इबादत की असल यानी असल हकीकत। अब हम इससे अगर अपने आप पर नजर डालें तो क्या हम वाकई इबादत करते हैं या हम कुछ और ही कर रहे हैं? इबादत नहीं कर रहे अल्लाह ताला की, क्योंकि हम सजदे तो कर रहे होते हैं, हम नमाजें तो पढ़ रहे होते हैं, हम बहुत सारे दूसरे काम भी कर रहे होते हैं, उम्र हज वगैरह भी और बहुत सारी चीजें, लेकिन ये जो हम काम कर रहे होते हैं तो इनके साथ साथ हम अल्लाह ताला की नाफरमानी भी तो कर रहे होते हैं ना, ठीक है? हम समझते हैं कि जी जो मुसल्ले की इबादतें हैं या जो हरम की इबादतें हैं, हरम में जाके जो की जाती हैं, सिर्फ ये इबादतें, ठीक है? और इबादत करने का हमने हक अदा कर दिया, हालांकि हम अताअत जो है वो अल्लाह की नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम हरम से बाहर निकलते हैं, बल्कि आजकल तो हरम के अंदर ही शुरू हो जाते हैं, राइट? अल्लाह की नाफरमानी, ठीक है? और जो है वो हम मुसल्ले से बाहर यानी मुसल्ले से जो है वो कदम बाहर निकालते हैं और हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे होते हैं, ठीक है? एक तो ये बात कि इबादत तो चलो जो हम यानी जिसको हम इबादत समझते हैं वो तो चलो अल्लाह की खातिर कर रहे होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद जो है वो शैतान की अताअत कर रहे होते हैं, ठीक है? तो शैतान की अताअत के साथ अल्लाह की इबादत, तो ये तो भाई यानी ये तो अल्लाह की इबादत तो ना हुई ना, ठीक है? इसमें तो आपने आधा शैतान आधा अल्लाह इस तरह का मामला किया हुआ है, या जिसको के हम कहते हैं वो अंग्रेजी जुबान का एक मुहावरा है, एक साहब ने बल्कि मुझे करेक्ट भी किया था उसमें, लेकिन मेरे जहन में यही मुहावरा है कि जो यानी रोमन मिथ कल्चर के अंदर ये मशहूर है कि गिव टू सीजर व्हाट इज सीजर्स एंड गिव टू पोप व्हाट इज पोप्स। सीजर कौन होता है? सीजर जो है वो उनके बादशाह को कहते थे, ठीक है? जो कि मुशरिक और काफिर बादशाह होता था सीजर, ठीक है? दुनिया परस्ती उसका वो आइकॉन था सीजर। तो सीजर का जो आपके ऊपर हक है ना वो तो आप सीजर को दें, और पोप साहब का जो आपका पोप साहब का आपके ऊपर जो हक है वो आप पोप को दें। पोप को कम देने का मतलब ये कि दीन को, ठीक है? तो यानी कि जिसको कहते हैं कि वो संडे संडे को आप चर्च चले जाएं और बाकी हफ्ते जो है वो अपनी शुगल के अंदर जिंदगी गुजारें, हमारे यहाँ जो है वो जुमे को जो है आप नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं और बाकी हफ्ता जो है वो अपनी मन मर्जी पूरी करें, ठीक है? तो ये तो कोई दीन नहीं होता, ठीक है? तो एक तो ये हो सकता है कि जी इबादत तो चले आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे काम जो हैं वो आप शैतान की अता कि इसमें इबादत ना हुई ना, ठीक है? क्योंकि इबादत तो मुतलकन अल्लाह के अताथ को कहते हैं, ये है असल में इबादत। दूसरी اس کے اندر پہلو بڑا امپورٹنٹ وہ ہم دینداروں کے لیے بھی ہے, کیونکہ ہم دیندار جو ہیں وہ ہلا گلا والی جو جو ہوتی ہے, رقص ناچ گانے والی, اور بے حیائی بے شرمی اور زنا اور شراب والی زندگی وہ تو دیندار لوگ نہیں گزارتے. لیکن یہ کانسیپٹ دینداروں کے اوپر وہ اس کو شیطان کی سے دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے اندر اس شکل کے گناہ نہیں ہوتے کہ جیسے کہ بے دین لوگ گناہ کیا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے دینداروں کے ساتھ غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم عبادتیں تو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ظاہری طور پر ویسے گناہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن شیطان ہماری عبادتوں کے اندر اپنا حصہ کیسے ڈالتا ہے کہ وہ ہماری عبادتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ ویسے شراب کباب والے گناہ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو ان کی زندگی سے تو بہت سارے ظاہری گناہ جو ہیں ویسے ختم ہو چکے ہیں, اور ان کو واپس ان گناہوں پر لے جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اب شیطان جو ہے نا وہ ہماری عبادتوں کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ پھر کس طرح سے کرتا ہے؟ وہ اس طرح کرتا ہے کہ ان عبادتوں کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی بجائے وہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے نا مائل کرتا ہے کہ تم اپنے یعنی نفس پرستی کے لیے ان عبادتوں کو کرو. ٹھیک ہے, یعنی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے خالی ان عبادتوں کو کرو. ٹھیک ہے, یعنی عبادتوں کو بھی جو ہے وہ اللہ کی بجائے کرنے کے بجائے انسان جو ہے وہ اپنے نفس کی خوشی کی خاطر کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے نا در حقیقت وہ کر کیا رہا ہوتا ہے کہ وہ عبادتیں نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ وہ چونکہ نفس کی اطاعت میں یہ نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ ان عبادتوں کے ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے. تو عبادت جو ہے وہ در حقیقت اطاعت کا نام ہے. اگر اطاعت ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے تو صرف ظاہری طور پر چند عبادتیں کر لینا جو ہے یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کے اصل مفہوم کو سمجھیں. ٹھیک ہے, اصل مقصد کو سمجھیں کہ وہ اطاعت ہے, اور یہ دیکھیں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر اطاعت ہے کہ نہیں ہے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں عبادتیں ہیں کہ نہیں, بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر اطاعت ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اطاعت کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اطاعت کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو اوپر سے حکم مل رہا ہو, اوپر سے. ٹھیک ہے, کیا مطلب؟ چھت پر سے. ہمارے گھر کے اوپر جو چھت ہوتی ہے وہاں سے اگر کوئی کھڑا ہو کر کے لاؤڈ سپیکر کے اوپر ہمیں حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو مان لینا اور اس پہ عمل کرنا یہ اطاعت کہلائے گا. اوپر سے کیا ہوتا ہے جی؟ اوپر سے کا کیا مطلب ہے؟ اوپر سے جو حکم ملے اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو کیا مطلب ہے جی بتائیں؟ اطاعت جو ہے وہ اوپر سے حکم ملنے کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں. تو اوپر کیا چیز ہوتی ہے؟ بندوں سے شیخ سے. اچھا, اوپر کیا بس شیخ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا؟ اللہ سے. اچھا, ہمارے بڑے. ہاں, بڑوں سے. اچھا, ہمارے بڑے. بیوی کو, شوہر سے, اولاد کو, ماں باپ سے, اللہ تعالی سے, اپنے مشائخ سے. جی ٹھیک ہے, تو اوپر سے مراد جو ہے نا وہ جو ہمارے بڑے, وہ بڑے جن کو اللہ تعالی نے ہمارے بڑے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا, اوپر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر کا مطلب اوپر کی منزل میں رہنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اوپر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ صرف جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں جس کے زیادہ بال سفید ہو چکے ہوں وہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس اس کے زیادہ بال سفید ہیں, یا اس کی عمر جو ہے وہ ہم سے 30 سال زیادہ بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اوپر والا ہے. ٹھیک ہے, نہیں. اوپر والا کون اوپر والا ہوتا ہے؟ اوپر والا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اوپر والا بنایا ہو. ٹھیک ہے, جس کو اللہ نے اوپر والا بنایا ہو وہ اوپر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی بات مان کر کے چلنا یہ اطاعت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ اطاعت جو ہوتی ہے نا یہی عبادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اوپر والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو سب سے اوپر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو ماشاءاللہ ہم سب مسلمان بڑے وہ ہے نا، جیسے پچھلی ایک کلاس میں بات ہو رہی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کو واقعی آتی ہے تو پھر اس کو اس کلاس میں بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کو تو پھر ہم بیچاروں کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ تو ایک مذاق والی بات تھی تاکہ آپ کی ذرا بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی تو انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا نا کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے کیسے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو بھائی اصطلاحاً کہہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات مانی جاتی ہے، اصل میں کس کی بات ماننی ہوتی ہے؟ جو کہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو کہ ہمیں آ کر کے ہمیں اللہ کا حکم بتاتا ہے کہ یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، انہی لوگوں کو رسول کہا جاتا ہے بھائی، ان کو رسول کہا جاتا ہے، انہی کو مرسلون کہا جاتا ہے، جن کا کہ ذکر بار بار ہم سورہ یاسین کے اندر پڑھ رہے ہیں، رائٹ؟ یہ جو لوگ تھے بستی والے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ تو نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ کی آواز تو نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو نظر نہیں آیا تھا، رائٹ؟ ان کے پاس تو بندے آئے تھے نا، اور وہ بندے جو ہے وہ دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنی بات پیش کری کہ بھائی ہم سچے بھی ہیں، ہم کسی کی بدخواہی نہیں کرتے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. تو ان کی بات ماننا جو تھا وہ اللہ کی بات ماننا کہلائے گا، یہ تھے ان کے اوپر والے لوگ، ٹھیک ہے؟ تو رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ اوپر والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی بات ماننی ہوتی ہے، چاہے ان کی عمر ہم سے زیادہ ہو یا ان کی عمر ہم سے کم ہو، رائٹ؟ یہ جو ابو جہل تھا، یہ نبی علیہ السلام سے عمر میں بڑا تھا کہ چھوٹا تھا؟ ابو لہب تو چچا تھا، یہ عمر میں بڑا تھا کہ چھوٹا تھا؟ یہ بڑا تھا نا، نبی علیہ السلام عمر میں چھوٹے تھے، لیکن کس کی اطاعت کرنی فرض تھی؟ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی فرض تھی. تو اس سے کیا پتا لگا؟ عمر کی یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مال پیسے کی یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، معاشری مقام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اعتماد کی بس حیثیت ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ کہ نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے، بس ان کی بات ماننی تھی، ابو جہل کو بھی ماننی تھی، ابو لہب کو بھی ماننی تھی، علی المرتضیٰ کو بھی ماننی تھی، عثمان غنی کو بھی ماننی تھی، ٹھیک ہے؟ عمر سے چھوٹوں کو بھی ماننی تھی، عمر سے بڑوں کو بھی ماننی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اب جو لوگ ہیں دنیا کے اندر زندہ، تو ان کے پاس رسول نہیں ہے، تو اب ان کے اوپر والے کون ہیں؟ جن کو اللہ نے اوپر والا بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اوپر والا کن کو بنایا ہے؟ اللہ نے جو ہے وہ علماء اور مشائخ کو اوپر والا بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اپنے دین کی سمجھ کے لیے، اپنے دین کے کام کے لیے. ہمیں بھی اللہ ہی نے پسند کیا. کس کے لیے پسند کیا؟ کسی کو کمپیوٹر کے علم کے لیے پسند کیا، کسی کو جو ہے وہ کھیتی باڑی کے علم کے لیے پسند کیا، کسی کو جو ہے وہ لا کے علم کے لیے پسند کیا، کسی کو جو ہے فائنانس کے علم کے لیے پسند کیا، لیکن ان کو اللہ نے اپنے قرآن اور نبی علیہ السلام کی سنت کے علم کے لیے پسند کیا، وہ لوگ علماء کرام کہلاتے ہیں. تو یہ اللہ کے اپوائنٹڈ اوپر والے ہیں، یہ اللہ کے اپوائنٹڈ اوپر والے ہیں. تو علماء کی بات ماننا. اور پھر جو مشائخ ہوتے ہیں، مشائخ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مشائخ وہ ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے دین کی سمجھ بھی رکھتے ہیں اور وہ ہماری سمجھ بھی رکھتے ہیں کہ جی ہمارے احوال کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اصلاحی تعلق بناتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی گائیڈنس میں جو ہے وہ دین پر عمل کریں گے. تو اس طریقے سے پھر وہ بھی ہمارے اوپر والے بن جاتے ہیں، اللہ کے اپوائنٹڈ اوپر والے، جن کو کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ اتھارٹی دی ہوتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق بناتے ہیں اور ہم آپ کی بات مان کے چلیں گے. تو یہ ہوتا ہے اطاعت، اوپر والوں کی مان کر کے چلنا. یعنی جن کے پاس رسول موجود تھے ان کے لیے رسول اوپر والے تھے، اور جن کے پاس رسول موجود نہیں ہے ان کے لیے رسول کے جو یہ جو وارثین ہوتے ہیں علماء اینڈ مشائخ، ان کی بات مان کر کے چلنا، عبادتیں کرنا، معاملات کرنا، گھر کے احوال کرنا، رائٹ؟ یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ. اب لوگ جو ہیں جو گھروں کے اندر عموماً تنازع ہوتے ہیں نا عبادتوں کے پیچھے، تو اس کی بات بھی سن لیں کہ عبادتوں کے پیچھے جو گھروں میں تنازع ہوتے ہیں نا، وہ تنازع جو ہیں وہ اچھے خاصے ریزولو ہو سکتے ہیں اگر ہم ان عبادتوں کے بارے میں اپنے مشائخ سے مشورہ کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ کہ کیا میرے لیے یہ جو عبادتیں ہیں کہ جن عبادتوں کے لیے میرے گھر کے دوسرے افراد راضی نہیں ہو رہے ہیں، تو کیا مجھے یہ عبادتیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں یہ ایسے کام کروں یا نہ کروں؟ اگر ہم اپنے مشائخ سے پوچھ کے کر لیا کریں نا تو ہمارے بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جایا کریں, ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ہم جب مشائخ سے نہیں پوچھتے ہیں نا تو پھر جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ ہماری عبادتیں لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن دراصل وہ صرف نفس کی اطاعتیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں وہ؟ نفس کی اطاعتیں ہوتی ہیں, وہ عبادتیں نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نہ تو ہمیں عبادت کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ہمیں الٹا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ اصلاحی تعلق دیا ہونا تو اب اس اصلاحی تعلق کی قدر یہ ہے کہ پوچھ کے بھی چلا جائے, مشورہ کر کے چلا جائے, ادروائز جو ہے وہ پھر ناقدری کہلائے گی اور ناقدری کے اوپر پھر سزا ملا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.